बच्चों को बड़ी भूख लगी, हमें बड़ी भूख लगी है। हे बलदेव, हे कृष्णा, ऐसे इस असुर से हमारी रक्षा करें, बड़ी भूख लग रही है। और सुंदर सुंदर मीठी मीठी सुगंध आ रही है, पके हुए ताल फल हैं पास में, किंतु वहां पर कोई नहीं जा सकता। कंस के बहुत से सैनिक हैं, जिनका सेनापति धेनु का असुर है, गर्द का असुर है, वो गधे के रूप में रहता है, उसका परिवार भी गधे जैसा सब बना रहता है, और किसी भी साधु संत को, ब्रजवासी को वहां से फल नहीं लेने देते। इसलिए हमारी इच्छा हो रही है कि आप लोग हमें उस फलों को खिलाइए। पके हुए फल थे एकदम लाल लाल, ऊपर में थोड़ा सा हरा, और सब लाल लाल, सुंदर सुगंध मीठी मीठी आती है। बलदेव जी ने कहा जी ठीक है चलो, बस बलदेव जी के सेनापतित्व में सब सखा लो कृष्ण को लेकर के और इस स्थान पर आए। इस स्थान पर बहुत ही भयंकर जंगल था, उसके बीच में हजारों हजारों ताल के वृक्ष थे। ये ताल का वृक्ष है, देखो इसको ताल कहते हैं, बंगाल इत्यादि में बहुत होता है, समुद्र के किनारे बहुत आता है, नारियल और ताल और खजूर, तो ताल के वृक्ष थे। सब फल पके हुए हैं, बलदेव प्रभु जी आए, बल के अधिक शास्त्री देवता हैं, नीचे से पकड़ करके एक हाथ से और हिलाया और पके फल तप तप करके गिर गए। आवाज हुई, गधों ने देखा कि हमारे राज्य में किसने प्रवेश किया, देखा कि हजारों बालकों के साथ में, गायों के साथ में ये सब आ रहे हैं इधर में, और उसी को खा रहे हैं हमारे फल को। बस एक तरफ से आक्रमण करना आरम्भ किया, धेनुकासुर, उसके भाई बंधु, स्त्री पुत्र कलत्र, हजारों गधे एक साथ में उन पर आक्रमण किया। बलदेव जी के छाती में उसने पैर मारा, उन्होंने उसके पैर को पकड़ा और घुमाया, और घुमा करके एक ताल के ऊपर में फेंका, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, टक्कर खा करके सारे वृक्ष दो चार इधर उधर बच गए होंगे, 10-20, बाकी सारे पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर पड़े और फलों से सारा मैदान भर गया। बच्चों की बड़ी खुशी हुई, किंतु इतने में गदासुर के मरने पर उसके जितने सामंत थे, सेवक थे, वो सभी लोग कृष्ण बलदेव को और सखाओं को मारने के लिए आए, किंतु कृष्ण बलदेव ने सबको वहां पर मार डाला, गधों की जीभ से भर गया, बहुत से रक्त इत्यादि वहां पर रक्तपात भी हुआ, एकदम भयानक एक दृश्य उपस्थित हुआ। फल खाड़ा अब नहीं हुआ फल, क्योंकि मर गए हैं सब, चारों तरफ में गंदा और रक्तपात और मरे हुए आदमी है, उसमें कौन फल खाएगा, उसमें उन लोगों ने फल नहीं खाया। इसके बाद में उनको मारने के बाद में फिर यहाँ से लोग चले गए, असुरों का विनाश हुआ। इसके बाद में जो फल रहे, जो पेड़ रहे, उसके फलों को बीच बीच में सखा लोग आते उसे खाते। अब तक ब्रजवासियों को कंस के भय के मारे यहाँ पर कोई नहीं आता था, सारा फल यहाँ से जाता था मथुरा की राजधानी में, और वहां पर कंस, चारुण, मुष्टिक इत्यादि जितने असुर वर्ग थे वही सब लोग खाया करते थे। कभी कभी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, पिकनिक करने के लिए कंस महाराज भी आते होंगे। इस तरह से कोई ब्रजवासी नहीं आता था, किंतु कृष्ण ने देखा, कृष्ण और बलदेव जी ने तब उनको मार करके और एकदम चारों तरफ में ठीक कर दिया। अब ब्रजवासी लोग भी आने लगे खाने पीने लगे। इसका उद्देश्य यह है, कृष्ण की लीला में दो पहलू, एक ऊपर का एक भीतर का। ऊपर से मालूम होता है कि मार काट करके सबको किया, सबको मुक्ति दी, जिसको बलदेव प्रभु जी ने, कृष्ण ने मारा उनको तो संसार से मुक्ति दे दी, प्रेम नहीं दिया, बिना भजन के प्रेम नहीं होगा, वो भी भजन कौन सा भजन, वैकुंठीय भजन से नहीं होगा, ब्रज के भावों में से, या तो सत्य, वात्सल्य और मधुर भाव, तीनों महाशय कोई एक होना चाहिए, तब ब्रज की सेवा मिलती है। यहाँ पर बलदेव प्रभु जी कृष्ण के भैया हैं, भैया होने पर भी जीव मात्र के गुरु हैं। कृष्ण की सेवा के लिए आसन बसन भूषण छत्र समर पादुका बंसी अलंकार सभी वो बने हुए हैं। उनको विचरण करने के लिए भूमि बने हुए हैं, ये उनके लिए ही वो वन जंगल इत्यादि सब बने हुए हैं कृष्ण के लिए, सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। देखा जो ये जीव भगवान को छोड़ करके माया में मोहित हो रहा है, बड़े ये लोग दुखी हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगने के लिए सबसे पहला बात है, पहली बात अज्ञानता नहीं होना चाहिए। ये अज्ञानता भी चार प्रकार की है, एक अपना ज्ञान, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मैं कृष्णदास आत्मा हूँ, सारा ये ज्ञान होना चाहिए। जितने भी आराध्य हैं समस्त आराध्यों में कृष्ण ही सर्वाराध्य हैं, राधा जी और कृष्ण ये सर्वाराध्य हैं। और लोगों का तत्व क्या है ये सब अच्छी तरह से जानना चाहिए। अवतार क्या तत्व है, कृष्ण क्या तत्व है, स्वयं रूप क्या तत्व है, और जीव क्या तत्व है, माया क्या तत्व है, ये सब जानना चाहिए। तो एक जीव का तत्व अपना, एक कृष्ण का तत्व, दूसरा माया का तत्व और तीसरा भक्ति का स्वरूप, ये जानना चाहिए। इसमें अज्ञानता रहती है, मैं ये मनुष्य हूँ, भोग करने वाला हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का स्त्री हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, ये अज्ञानता है। हम कृष्ण के दास हैं, ये चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात, कृष्ण ही सबसे आराध्य हैं, देवता देवी सब उनके सेवक हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। ब्रजन श्याम सुंदर ही सबके आराध्य हैं, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कि जगत में जो कुछ देखते हैं ये सब माया का वैभव है। जरमत बोलो, माया का वैभव है। जब तक इसमें फंसे रहेंगे, स्त्री पुत्र परिवार बंधु भाई इत्यादि, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। इसलिए कुछ बाहरी कर्तव्य रहने पर भी अंतर से ये कृष्ण के साथ में संबंध होना चाहिए। और भक्ति का स्वरूप क्या है, क्या करने से भक्ति होती है, इस चीज को समझना चाहिए। नहीं, ये चार चीज नहीं समझने से भगवान का भजन नहीं होगा। धनुकासुर ये अज्ञानता की मूर्ति है। जब तक गधा यह लगा रहेगा तब तक भाई हमको ये ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये धनुकासुर को हटाना है। ये कैसे हटेगा, हम लोग नहीं हटा सकते, ये गुरु जी बलदेव प्रभु हैं, बलदेव का अधिक बल के अधिक साथ, ये यदि कृपा करें तो ये सहज ही हट जाएगा, अन्यथा हम जितना चेष्टा करेंगे और माया में फंसते जाएंगे। इसलिए सब गुरु का पदाश्रय करके हम अज्ञानता को दूर करेंगे। बलदेव प्रभु इन सबको मार करके, अज्ञानता को दूर करके, अनर्थ को दूर करके, अपराध को दूर करके, भगवान के चरणों में राधा कृष्ण की सेवा में हमें निजुक्त कर देते हैं। ये है इसका तात्पर्य। इसलिए हम लोग शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करेंगे, बलदेव प्रभु जी को आश्रय करेंगे, वही समस्त गुरुओं के भी मूल गुरु हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब तक बलदेव जी की नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम लोग परमात्मा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग ब्रज के भाव में नहीं होंगे। बलदेव जी की बहुत कृपा जरूरी होगी, वही अनंग मंजरी के रूप में है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उनसे प्रार्थना करें कि वे हम लोगों पर कृपा करें, जिससे कि हम लोग शुद्ध ब्रज भक्ति में हम लोग प्रवेश कर सके, हमारी अज्ञानता दूर हो सके, काम क्रोध लोभ मोह मा सब ये सब दूर हो और हम लोग शुद्ध रूप में कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सके। अंग्रेजी में कौन बोलेगा, यू कैन स्पीक व्हाट आई टोल्ड एंड यू तुम विद्या कैन टेल।
मेरा विलास किया है, यह उनका यह प्रिय स्थान मधुवन। इसी मधुवन के अंतर्गत मथुरा मथुरा मथुरापुरी कहलाता है। तो सबसे पहले जितने भी वन है समस्त वनों में इस मधुवन की विशेषता दिखलाई है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जितने भी आचार्यगण सभी आचार्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कांगत हुए आए हैं, कृष्ण बलदेव ने सखाओं के साथ में यहाँ पर लीलाएं की हैं। इस तरह से यह मधुवन श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद है 15वें अध्याय में जहाँ पर वन विहार के प्रसंग में वृंदावन के लीला का वर्णन होता है, जो कि कृष्ण बलदेव दोनों और गोकुल से वृंदावन को आए। कृष्ण के जब उम्र 3 वर्ष 4 महीना के थे तब गोकुल छोड़कर नंद बाबा समस्त ब्रजवासी जनों के साथ में वृंदावन में छत्तीसगढ़ में निवास तो छत्तीसगढ़ से कृष्ण बलदेव दोनों ही वत्स पालक बने और वृंदावन में आसपास के स्थानों में खेल कूद लीला विहार इत्यादि के द्वारा इस प्रकार वत्स पालक यानी बच्चों को चराया करते। तो उस समय यहाँ पासी में यह मधुवन है, जिस मधुवन में आकर के सखाओं के साथ में छोटी छोटी गोपियां यहाँ पर है, ऐसे सखन के साथ में विभिन्न प्रकार के लीलाएं यहाँ का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, दौरिया देखो ये वृंदावन के इस मधुवन के वृक्ष सब कैसे हैं, यहाँ के भौरे यहाँ के पशु पक्षी कैसे आपका स्वागत कर रहे। कृष्ण के अपने मुखारविंद से वर्णन मधुवन के लेखा है, जहाँ पर भौरे गुंजायमान है गुण गुण सर से गान कर। तो भौरों के सर को मिलाकर भी कृष्ण ने वंश ध्वनि की चेष्टा। इस तरह से बलदेव जी से कहते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते लगेंगे जहाँ उन्होंने मधुपान किया है। इस तरह से केवल मधुपान ही नहीं है कि वृंदावन के धूल का लताएं लीला दुर्म आदि सब प्रेम में विभोर है, कृष्ण बलदेव के लिए विभोर हो रहे हैं। तो ऐसे जो ब्रज के लीला दुर्म आदि वृक्ष लताएं कृष्ण बलराम को पा करके स्वागत करते हैं अपने भवन में। देंगे अंत एव पुष्प फलाक्षा, हर पुष्पों के द्वारा नतते होकर प्रणाम करते और आंखों से आंसू बहता है, जाने फूलों से मधु की धारा घटती। तो ये जो है ये मधु धारा का प्रवल होना ये मधुवन है। तो इस प्रकार से ये मधुवन की लीलाएं केवल इतना ही नहीं, सत्ययुग से लेकर के यहाँ पर लीलाएं सबसे पहले मधुवन ये जो मधुरा हुआ है यहाँ पर हमने शत्रुघ्न गोपाल जी का दर्शन किया। तो श्री रामचंद्र जी के भ्राता शत्रुघ्न जी जबकि श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी और भरत जी इन लोगों ने बहुत सी सेवाएं की हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया मुझे भी कुछ सेवा प्रदान करें। बोले कि अच्छा समय आने पर हम जरूर बताएंगे। इतने में यहाँ के ऋषि मुनि लोग श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या में पहुंचे, वहां जाकर के उनसे निवेदन किया कि प्रभु मधुवन में मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर बड़ा ही अत्याचार करता है, समस्त प्रजाओं का ऋषि मुनियों का संतों का सबका अनादर उत्पीड़न करता है, तो उस दुष्ट का विनाश होना चाहिए। आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतीर्ण किए, जैसे लंका में राक्षस राज रावण का विनाश किया ऐसे ही लवणासुर का विनाश करके हम सबकी रक्षा करें। ऋषि मुनियों के निवेदन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम्हें लवणासुर को मारना होगा, मधुपुरी में जाना। तो उसी समय उन्होंने शत्रुघ्न जी को राय से कर दिया कि मधुपुरी के तुम राजा बनो। तो उस समय यह मधुवन था, तो उस मधुवन के उनको राजा बना दिए, राजा की घोषणा कर। तो शत्रुघ्न जी जब आने की तैयारी की उस समय श्री रामचंद्र ने उनको उनकी प्रार्थना से बराहदेव जी को दिया था, जो कि लंका से लाए थे कृष्ण वराह। और लवणासुर को मारने के लिए ये लवणासुर के पास में एक त्रिशूल था, जो कि मधुर दैत्य ने शिव जी की आराधना करके उस त्रिशूल को प्राप्त किया था। और उस त्रिशूल के हाथ में रहते हुए वह दुर्धर्ष पृथ्वी में अजेय था, कोई उसे पराजय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सूर्यवंशी नरेश मंधाता, जो कि देवलोक में विजय किया, विजय करने को गए, तो देवताओं पर जब चढ़ाई शुरू करती तब उस समय देवताओं ने कहा, अभी पृथ्वी पर मधुदैत्य लवणासुर, मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर, तो उसका तो अपना विनाश है। तो ऐसे ये लवणासुर जो है मंधाता को भी मार दिया। तो इतने बड़े दुर्घर्ष ये लवणासुर बहुत काल से यहाँ रहते रहते ऐसे असुरी प्रभाव से अत्याचार फैला दिया, जिससे कि सारे भूमि उजाड़, सब कांटे करिल के पेड़ और चारों ओर इस तरह से केवल भूमि हरी बनती चली गई, पानी भी खारा बन गया, इस तरह से पड़ा हुआ था उजाड़। तो उस लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न जी आए, श्री रामचंद्र जी ने उनको समझा दिया। यहाँ से चारों ओर पुरी को घेर लिया, इतने में लवणासुर जल के शिकार करने को गया था, घर में उस अस्त्र को छोड़ गया। ऐसे समय में पुरी को घेराव कर लिया, लवणासुर जब आया उसके साथ में महासंघर्ष हुआ। उस संघर्ष में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करके इस पुरी को बचाया था, इसलिए इस पुरी का नाम पनी से मधुरा है। मधुरा से परवर्ती काल में इसको मथुरा कहा जाता है। सर भागवत में भी कहा है, मथुरा नत्र भगवान नत्तम सन्निहितो हरि। यहाँ पर महाराज अम्बरीश जी भी आए थे, जो चक्रवर्ती सम्राट समग्र पृथ्वी के जो राजा, समस्त राज कार्य मंत्रियों पर दे करके यहाँ पर उपस्थित होकर के इस मधुवन में भगवान की आराधना। आज भी मथुरा में अम्बरीश जी का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जहाँ पर दुर्वासा जी के साथ में ये प्रसंग तो आप लोग जानते हैं, दुर्वासा जी आए और उन्होंने भक्तों की परीक्षा ले तो अम्बरीश महाराज जी की महिमा प्रकाशित हुई। भगवान ने अम्बरीश जी के लिए चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, धृत राक्षसी को जला डाला और दुर्वासा जी के पीछे पीछे घूमते रहे। एक वर्ष से घूमते हुए जहाँ पर कहीं भी शरण नहीं मिला, भगवान ने उनको कहा कि अम्बरीश महाराज जी के पास। तो पहले से ये मथुरापुरी है, मथुरा है, जहाँ मथुरा में सभी राजा लोग, जितने भी प्राचीन ऋषि मनुष्य हुए हैं, यहाँ पर आए हैं भगवान की आराधना करने को, क्योंकि मथुरा यत्र भगवान नित्यम सन्निहितो हरि। महाराज सूरसेन ने भी यहाँ पर मधुपुरी में ही राजधानी बसाई है, पर यहाँ पर राजधानी बना करके यहीं पर उन्होंने राजकार्य शुरू कर दिया, राजशासन, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्रीहरि अति शीघ्र ही प्रकट होंगे, उन्हीं के वंश में यह जान गए थे, इसलिए जानबूझ करके समस्त जानवरों के साथ में यहाँ पर निवास करते थे। इसी प्रकार के जो मधुपुरी है और मधुपुरी के अंतर्गत यह मधुवन मथुरा से संलग्न है, जहाँ पर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के लीलाएं की। केवल इतना ही नहीं, वेदों में भी वर्णन आता है, ओम मधुवातारिपायते मरिच्छरन्ति सिन्धव माध्येण संतोषति जाहु मधुम पार्थिवम रवि। इत्यादि ने कहा है ये मधुवा में मधु है, वो मधु क्या है, कृष्ण प्रेम रूपी मधु। यहाँ पर गोपियों के प्रेमामृत का स्मरण किया है श्याम सुंदर ने, इसलिए यह प्रेमामृत मधु का स्थान है, जिस मधु का कृष्ण ने स्वयं आस्वादन किया है, समस्त भक्त जनों में किया है। इसलिए यह मधुवन और कलयुग के अंतर्गत स्वयं कृष्ण जन्म जो ब्रज विलासी है, गौरहरि के रूप में यहाँ आए और प्रेमोन्माद में उन्माद ग्रस्त हो गए, भाव में विवर होकर इन सभी स्थानों का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु आए, सर्वत्र भ्रमण करते ही उत्तन्न नृत्य करते हुए चले, समस्त गायों के झुंड के झुंड गायों को देख करके उनके देश में दौड़ पड़े, कहा कृष्ण कहा कृष्ण, कन्हैया कहा है कन्हैया कहा है। हमें आकाशवाणी हुई कि ब्रज के कृष्ण अब नवद्वीप नदियों में अवतीर्ण हुए। आप बलदेव जी बहुत दिन हो गया कृष्ण अब ब्रज में लौटे नहीं, तो बलदेव जी बार बार यही कहते रहे, अरे भैया तुम रोज दिन तो रोते हो ब्रजवासियों के लिए, ऐसे केवल आंखों से तो आंसू बहाते हो परंतु ब्रज में जाने का नाम गंध नहीं लिया, तुम चलोगे तो चलो नहीं तो मैं जाता। तो उन्होंने जब कोई नाम ही नहीं लिया जाने का तो बलदेव जी स्वयं आए, यहाँ आकर के जबकि ब्रज में प्रवेश किया ब्रजवासियों की स्थिति को देखा, नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासी जनों ने उनको तो गले में लगा दिया, आंखों से आंसू से स्नान कराया, ब्रज गोपियां प्रेम में विवाह हो गई, उन मदान्धा हो गई, उनकी स्थिति को देख करके बलदेव जी भी स्वयं रो पड़े, कोई सांत्वना वाक्य नहीं, फिर भी किसी प्रकार ब्रज गोपियों को सांत्वना दिया। तो यहाँ आ करके उन गोपियों के साथ में भ्रमण करते बलदेव जी जब ब्रज में आए, कृष्ण के विरह में उस गोपियों से जो प्रेम जो था इतना उमड़ा हुआ, उस विरह में विप्लम्ब में प्रेम में बलदेव जी भी स्वयं डूब गए और डूब करके कृष्ण भाव में विभोर होकर श्याम वर्ण के बन गए। इस प्रकार ये मधुवन है जहाँ पर कृष्ण लीला का नित्य स्थान है, इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ के धूल कण को हम आश्रय करते हैं, समस्त गुरुवर या वैष्णव या सभी लोग इन्हें स्थानों में उपस्थित हुए हैं, उन्हें के धारा में हम लोग भी आए हैं, ऐसे गुरु वैष्णवों की अहित की करुणा धाम की कृपा करुणा हो जाए और लीलाओं की सदाय में स्फूर्ति हो, इन्हीं प्रार्थना के साथ में मैं अपना प्रश्न रहता हूँ।
Hare Krishna, because such a loud narration that I don't even think that I would depict it as it is anyway. Shivanand Prabhu told us that this is Madhavan. There are 12 main ones.
Krishna ko kaha, tum to bahut shor hai. Yashoda Bai, I told one day that you are very drifty. And tum chori karte ho. Kahiye main kya chori karta hu? Yashoda Bai kahiye tum ghar ghar mein jakar ke makkhan chori karta aur kehta hai ki main nahi chori karta. कृष्ण बोले कि मैया तुम झूठ मूठ को हमको क्यों कहती है, ये तुम चोर है। और कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा भोर भयो, भोर भयो गौवन के पाछे मदबन मोहि पठायो, मैया मैं नहीं मां खाऊं, मैं मां को कब खाया, सवेरे सवेरे अंधकार रहते रहते और गायों के पीछे हमें तो मधुबन ने भेज दिया, तो सवेरे तो मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा जी हाँ तुम माखन नहीं खाया तो किसने खाया, तुमने जरूर चुराया मक्खन, मैं तो फिर दिन भर वही रहा गायों के पीछे पीछे। और शाम भयो, जब शाम हो गई तब क्या हुआ, तब वो शाम में जब अंधकार हो गया तो मैं घर में आया, थका माका आया और आकर के सो गया, तो रात में मैं कहाँ माखन चुरा, मैं तो घर में सो गया, घर में मुझे घर में कहाँ रहा, तो इसलिए मैंने कब माखन चुराया, जसोदाइया तूने ही माखन चुराया, जरूर चुराया। चन्मैया तुम बहुत निष्ठुर है, यदि मैं तुम्हारा अपना पुत्र होता शायद तब तो तुम ऐसा नहीं करती, मालूम होता है कि मैं पराये का पुत्र हूँ, इसलिए तू ऐसा हमारे प्रति तू कहती है, जाम लगाती है कि जो चोर है। ये सुनते ही यशोदा जी का हृदय एकदम द्रवित हो गया, आंख में आंसू आ गए, बस अपनी छाती से लगा लिया, बोला जे बेटा तुमने मक्खन नहीं खाया, सचमुच में तुम तो सवेरे चला गया और भला कब खाया, शाम को आया रात हो गई तुम कब खाया। जब रोने लगी तो फिर उन्होंने कहा तूने नहीं मक्खन खाया, इसे कृष्ण का भी सुर बदल गया, तब वो कहते हैं मैया मैंने ही माखन खाया। आज यशोदा जी कहते हैं नहीं,
पहले नहीं माखन खायो। कृष्ण भी रोने लगे, यशोदा जी भी रोने लगी और उन्होंने गोदी में ले लिया। कहे अब ऐसा नहीं मैं कहूंगी, तू कभी माखन चुरा करके नहीं खाए। ये सब लीलाएं मधुबन संबंधी हैं। कितनी लीलाएं भरी पड़ी हैं।
आपकी उम्र में जिन्होंने भगवान की आराधना की 6 महीना में ही श्री नारद जी की कृपा पात्र बनकर यहाँ पर आए और यहाँ उन्होंने तपस्या की, जैसे जैसे भगवान का दर्शन किया है, अभी हमारे कृपा सुधरना को आप लोगों को
मैं यदि बोलूँ तो भाग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा।
यही है ध्रुव टीला। मधुबन के अंतर्गत एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर चारों ओर अभी भी झाड़ियाँ वनों से सुशोभित इस मधुबन को सुशोभित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव जो है शाम्भू मनु के नाती श्रीमद भागवत में तीनों वंश का वर्णन होता है, चंद्रवंश, सूर्यवंश और सर्वप्रथम शाम्भू मनु का वंश। तो मनु में शाम्भू मनु सबसे पहले हुए हैं, जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुबह के समय में मानव पुत्रों को रखने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं बड़ी, तब उन्होंने प्रकृति और पुरुष के जोड़े को तैयार की, जो की शाम्भू मनु और शतरूपा। शाम्भू मनु के दो पुत्र किए हैं प्रियव्रत और उत्तान पाल, और तीन कन्याएं हुई हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति प्रथमाय, आकुति रुचये और प्रसूति दक्ष प्रजापति, अर्थात प्रसूति नाम ने कन्या को दक्ष प्रजापति को दिया, आकुति रुचि को दिया, रुचि नामक प्रजापति को दिया और गर्दम ऋषि को देवहूति को दी। इस तरह से तीन कन्याओं का विवाह हुआ। उसमें से जो कि प्रकृति नाम निकलना है दक्ष प्रजापति से बहुत से पुत्र कन्याएं हुई हैं। इसी से ये वंश विस्तार हुआ, धीरे धीरे मानव समाज वर्धित हुआ है। अब उनके शाम्भू मनु के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद जब राजा हुए तब उनकी दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम। एक दिन बालक ध्रुव छोटे से बालक है 5 वर्ष के उस उम्र में ही, एक दिन पिताजी के गोदी में राज सिंहासन में बैठे हुए थे राजा महाराज, तो उनके गोदी में बैठने गए। इतने में उनकी विमाता सौतली माँ सुरुचि ने देख लिया तो कहा कि ध्रुव तुम पिता के गोदी में, तुम्हारे पिता के गोदी में बैठ नहीं सकते, यदि तुम्हें बैठने की इच्छा है तो तुम इस शरीर को छोड़कर फिर से मेरे पेट में जन्म लो, जबकि तुम अपने पिता के गोदी में बैठ सकते हो, राजा के अधिकारी बन सकते हो। तो इस बात को कांटे की तरह एकदम हृदय में चुभी, तो उस समय बड़े दुखी होकर ध्रुव वहां से चलाया, रोता रहा। इतने में उनकी माँ को दूसरों के द्वारा ये खबर पहुंच गया कि ऐसे ऐसे बालक को कटु वचन कहा, तो बालक दुखी होकर के रो रहा था। तो इतने में मैया भी रोने लगी कि अरे दुखी माँ के दुखी संतान, तो उसके लिए ऐसा ही अपदस्त, आज से ही ऐसी यदि स्थिति हो तो आगे क्या होगा। उस समय उसकी माँ रोती हुई बोली कि देखो इस जगत में एकमात्र सहायक है भगवान श्रीहरि, जो कि श्रीहरि के कमल लोचन श्रीहरि की आराधना करके तुम्हारे पूर्वजों ने इस जगत में भोग वैभव को प्राप्त किया है और पर जगत में भी सुख शांति को प्राप्त किए है, इसलिए तुम कमल लोचन हरि की आराधना करो जो कि तुम्हें सब प्रकार से अनुग्रह करेंगे। ऐसा सुनकर ध्रुव के मन में वह निश्चय हुआ कि मैं भी कमल लोचन हरि की आराधना करूंगा। माता की बातों को सुनकर वहां से निकल पड़े कि कमल लोचन हरि कहाँ है, हरि कहाँ है। जबकि ऐसे घूमते घामते मथुरा के जमुना के किनारे गंभीर वन प्रदेश इधर में घूमते घामते आए, इतने में भगवान श्री हरि अंतर्यामी प्रभु नारद जी को भेजा कि नारद जाओ, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको मार्गदर्शन कराओ। जब जब भगवान कृपा करते हैं कोई जीव भगवान के प्रति उन्मुख होता है और भगवान की कृपा होती है तब गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने, अंतर्यामी रूप से स्वयं ही प्रेरणा देते हैं, ऐसे सदगुरु को हमें प्राप्त कराते हैं। ऐसे सदगुरु का प्राप्त जैसे ध्रुव को हुआ है कि नारद जी महाराज वहां उपस्थित किए और आकर के उनकी परीक्षा ली, बोले कि बालक तुम यहाँ पर कैसे इस गंभीर जंगल में कहाँ घूम रहे हो, घर जाओ, यहाँ तो बाघ भल्लू शेर गद्दार है, तुम्हें खा जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, यहाँ से जल्दी भागो, अपने घर लौट जाओ। बोले कि नहीं, मैं तो घर नहीं आऊंगा, मैं तो घर छोड़ करके आया हूँ, मैं श्रीहरि की आराधना करूंगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मेरी सौतेली माँ ने मुझे कुटुंब वचन कहा है, इसलिए मैं घर नहीं लौटूंगा, मुझे राज सिंहासन में नहीं बैठाएंगे और ना ही पिता के गोदी में बैठने दिया है, इसलिए मुझे भजन करना है। बोले अरे ऐसे छोटे छोटे बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए, ये तो भूल जाना चाहिए, तुम बालक हो, अभी बालकपन में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर नहीं मचाना चाहिए, तुम लौटो। तो बहुत सी परीक्षा की, फिर भी बालक नहीं लौटे। बालक ने कहा कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, युद्ध में तो सामने मरना जानता हूँ, कभी पेट दिखाना हमारे लिए कर्तव्य नहीं है, मैंने सीखा नहीं, इसलिए हमें तो हरि की आराधना करनी होगी। ऐसा निश्चय देकर तो नारद जी ने कहा अच्छा यहाँ जमुना में तुम स्नान करके आओ। तो जमुना में स्नान करके आए, इतने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर मंत्र उनको प्रदान किया और विधि विधान सब बतला दिए। बोले कि इस तरह से इस मंत्र का जप करो, एक निश्चय होकर के भजन करते करते जरूर तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। तब नारद जी के आदेश से वो बालक ध्रुव इसी स्थान पर आए, यहाँ जो ध्रुव जी और ध्रुव नारायण जी का दर्शन कर रहे हैं। तो 6 महीना तक उन्होंने तपस्या की, पहले महीना में तो कहीं कुछ भोजन कर लिया और भगवान मंत्र का जप करने लगे, दूसरे महीना में भोजन भी छोड़ दिया, तीसरे महीना में अब 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार खाने लगे, ऐसे चौथे महीना में 15 दिन में एक बार, पांचवें महीना में पत्ता और खा करके और फिर ऐसे हवा पी करके ही रह गए। छठवें महीना में जा करके प्राणवायु को रोक लिए, प्राणवायु को रोकते ही सारे पृथ्वी से एकदम टलमल होने लगी, जैसे कि नाव में हाथी चढ़ जाए ऐसी स्थिति। तो देवता लोग घबरा गए कि एक बालक ध्रुव के अंगूठे टेक करके पैर जमीन पर अंगूठे टेक करके तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या का बल इतना है कि सारे पृथ्वी हिल रही है, अब तो भूकंप मचा भूचाल आ गया है और सारा संसार नाश हो जाएगा। उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से दर्शन दें। तब भगवान श्रीहरि उनके हृदय में प्रकट हुए और हृदय से हृदय ने दर्शन देते हुए जब बाहर आ गए, प्रत्यक्ष होकर के दर्शन लिया, तब ध्रुव ने देखा कि अरे प्रभु का तो अब दर्शन नहीं हो रहा है, तो आंखें खोल देखा कि सामने प्रभु विराजमान है। उस समय उनकी स्तुति प्रार्थना की तो भगवान बोले कि ध्रुव तुम वर मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं, बोले कि अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कुछ कामना वासना रही है राज्य प्राप्ति की लालसा, ठीक है आज से तुम्हें 36,000 वर्ष का निश्चिंतक राज्य प्राप्त होगा और मेरे लोग तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, तुम मेरे अक्षर लोग को प्राप्त करोगे। राजकार्य करते हुए अंतिम समय में मेरे चरणों में भक्ति लाभ करके समस्त सब को छोड़कर मुझको एकांत रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए ध्रुव ऐसे वरदान पा करके प्रभु के स्तुति प्रार्थना की, प्रभु भी अंतरित हो गए। जब लौटने लगे इतने में बालक के मन में आया, अरे ये मैंने क्या किया कि प्रभु से मैंने संसार की वस्तुओं को मांगा, परम न जाती। हे प्रभु हम आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं, हमें कोई वर की अभिलाषा नहीं, हम तो थक गए हैं कि कांच खोलते खोलते कांचन मिल गया और कांचन को पा करके उसे फेंक दिया और फिर कांच के टुकड़े में हम रम गए, इस संसारिक वस्तुओं में हम फंस गए। हाय हाय मेरे अंदर ऐसी कामना क्यों आई। तो
भगवान के चरणों में भक्ति लाभ के श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में इस ध्रुव प्रसंग में कहा है कि भगवान के चरणों में ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह समुदाय है, जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं उनके चरण चिन्ह विराजमान है। तो अंकुश आदि इसका क्या काम है, ये चिन्हों से क्या लाभ होता है? भगवान के चरणों में जो अंकुश है, अंकुश क्या करता है? बहुत बड़े मत वाले हाथ को एक छोटे से लोहे का अंकुश उसको बच कर लेता है। ऐसे भगवान के चरणों में जो अंकुश है, हमारे मत वाले मन रूपी जो हस्ती है, मन रूपी हाथी बेपरवा है, यह किसी की बात नहीं मानता है। तो भगवान के चरणों में जैसे भक्त आश्रय ग्रहण करता है, तो उनके चरणों के अंकुश उसके मन को पहले ही वशभूत कर लेता है। इसी तरह से उनके चरणों में अनुरक्त हो जाता है। इसलिए भगवान भक्त जन भगवान के चरण कमल को सबसे पहले आश्रय करते हैं। यह ध्रुव टीला है, ध्रुव जी का स्थान है, सप्त जी से यह प्रसिद्ध स्थान। ऐसे ही केवल एक युग का नहीं, कितने युग युगांतर बीते जा रहे हैं। श्याम मनु ब्रह्मा जी के पहले संध्या में पहले बार एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इस तरह से युग युगांतर कल्प कल्प बीतते जा रहे हैं, एक कल्प में एक बार आए हैं। तो अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो कितने लंबे समय से ये टीला है, ये बाण है, इस तरह से ध्रुव जी का स्थान आज भी प्रसिद्ध है। हम इन्हें स्थान को प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र को कुछ सुनाएंगे।
हरे कृष्ण।
जहाँ हम वृंदावन अभी बसा हुआ है, उसमें अटल लाभन बिहार बन कुंज बन
ये राम सबसे मर
ये शाखा बन, एक तरह से इसको कहा शाखा बन, एक बन भी है।
तो
चार बन मधुबन, ताल बन, कुमुद बन, ये बहुला बन, फिर इधर में काम्य बन, खदीर बन, कोकिल बन, ये मूल है इस तरफ में यमुना के इस पार में, और उसी कंदर में बिहार बन इत्यादि हजारों बन है, और यमुना के पार में भद्र बन, भंडीर बन, माठ बन, बेल बन, वृंदावन, महाबन और लौह बन, ये द्वादश बन मिल गए। ये द्वादश बनों में से एक ही एक ये है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, बहुला बन का के संबंध में ये बतलाएंगे। बतलाने के बाद में मैं विशेष रूप से जो बातें हैं मैं बतलाऊंगा। अभी इनके मुख से, ये ब्रजवासी हैं, यहाँ पर बहुत दिनों से सेवा पूजा करते हैं, वैष्णव भी है, वल्लभाचार्य संप्रदायगत वैष्णव भी हैं। वल्लभाचार्य के पास में वो गद्दी है, इसको क्या कहते हैं,
बैठक
बैठक कहते हैं, वो भी है। आप इनके मुख से पहले सुनिए। लाठी बहु मने अधिक प्रेम को ला देता है, जो वन में इसमें आएगा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम होता है, इसलिए इसका नाम बहुला बन है।
दूसरी बात, यहाँ पर ये सरोवर देखते हैं, इस सरोवर के पास में कभी कोई